नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के साथ अवसरों की तलाश करना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक के बारे में जानकारी दी है।
ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। जनवरी 2015 में श्री निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।